الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلة ہے آسان درس قرآن آج سورة النساء کی آیت نمبر 20 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق یہ ہے کیونکہ سورہ نساء میں خواتین کے حقوق پر بڑی کثرت کے ساتھ کلام کیا گیا ہے اور زمانے جاہلیت میں جو عرب کی عورتوں پر ظلم و ستم کے طریقے رائج تھے قرآن مجید نے ان طریقوں کو ختم کیا ان میں سے ایک طریقہ وہ تھا جس کا یہاں پر بیان ہے اور جس کا یہاں پر جو ہے وہ حل بیان فرمایا گیا اور جس کے بارے میں نصیحت فرمائی گئی وہ یہ تھا کہ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا اہل جاہلیت کا کہ جب کسی عورت سے جان چھڑانی ہوتی اور کوئی دوسری شادی کرنی ہوتی تو اب چونکہ اگر اس بیوی کو طلاق دے کے دوسری جگہ شادی کریں گے تو اب اس بیوی کو جو حق مہر ہے وہ دینا پڑے گا اور جو اس کو دیا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا تب ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلی بیوی پر کوئی تہمت یا الزام لگا دیتے ہیں اس کے کردار کے اوپر اس کی چیزوں کے اوپر کوئی تہمت لگا دیتے اور تہمت لگانے کی وجہ سے وہ عورت مجبور ہو کے خود اس شوہر کو چھوڑ جاتی یا یہ ہوتا کہ چونکہ تہمت کی وجہ سے اسے چھوڑا ہے طلاق دی ہے تو اب اس کے مہر سے جان چھوٹ جاتی کہ اب اس کو کوئی پیسے نہ دینے پڑتے گویا محض کچھ رقم کی خاطر اور کچھ پیسوں کی خاطر عورتوں پر بہتان لگانا اور تہمت لگانا یہ ان کا طریقہ تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہتے ہو یہ اگر کے ساتھ اس لیے ہے کہ جس سیاق میں یہ گفتگو ہے وہ یہ ورنہ تو بیوی کو بہرحال اگر کسی نے دوسری بیوی نہ بھی کرنی شادی نہ بھی کرنی ہو جسٹ پہلی کو چھوڑنا ہی ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ اگر بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ دو کیونکہ دیکھ کر واپس لینا جو ہے یہ ایک یوں کہہ لیں کہ گھٹیا پن کی علامت ہے اور وہ بھی خاص طور پہ بیوی کو کہ جس کے ساتھ آدمی کی زندگی کے کتنے ہی معاملات جو ہے وہ چلتے رہے تو فرمایا کہ کیا تم جھوٹ باندھ کے اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کے اسے یہ رقم واپس لوگے تو مراد یہ کہ عورتوں کے ساتھ یہ جھوٹ کا بہتان کا تہمت کا اور گناہ کا رویہ اختیار نہ کرو اب اس کے بعد مزید اسی پر فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے فرمایا کہ یہ دیا ہوا مال تم ان سے کیسے واپس لوگے حالانکہ تم اپنے رشتے کی نوعیت پہ غور کرو کہ تمہارا رشتہ ایسا بنا تھا کہ تم تنہائی کے اندر خلوت کے اندر تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو تو تمہارا قرب اور ملاپ جب اس حد کا تھا تو اب اس کے بعد یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسی اجنبیت کا برتاؤ کرو کہ ظلم اور ستم کے اوپر اتر آؤ ایک بات دوسری بات یہ ہے فرمایا کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ تم سے بڑا مضبوط عہد لے چکی تھی مضبوط عہد کیا ہے وہ ہے عقد نکاح کہ جب شوہر بیوی کو بطور بیوی کے قبول کرتا ہے اور بیوی شوہر کو بطور شوہر کے قبول کرتی ہے تو اس کا مطلب محض दो जुमलों का तबादला नहीं होता कि कबूल है कबूल है, ये महज दो जुमलों का तबादला नहीं है, बल्कि ये दोनों का अपनी पूरी जिंदगी दूसरे के हवाले कर देने का मोहब्बत है। फिर एक दूसरे के बीसियों बल्कि सैकड़ों हुकूक अदा करने का मोहब्बत है। तो ये जो निकाह है उसके पीछे जो एक मजबूती है उसे यहां पर बयान फरमाया मीसाकन गलीज़ा। ये एक अहद है, एक मोहदा है, और मोहदा भी मामूली नहीं बल्कि फरमाया बहुत मजबूत। तो जब एक मजबूत मोहदा बांधकर तुम एक दूसरे के साथ जो है वो करीब आ चुके हो, तो अब अगर किसी वजह से वो तुम्हें मुआहदा ख़त्म करना पड़ गया और तुम एक दूसरे से जुदा हो रहे हो, तो अब पुरानी सारी की सारी अपनाइयत और पुराने सारे के सारे अहद और पुराने सारे के सारे जो इंतफा थे उसे यूं ना भुला दो कि अब उन औरतों के ऊपर जुल्म पर उतरा। तो ये उस सियाक के अंदर कलाम है। लेकिन इसके साथ जो निकाह है, मामलाए निकाह के अंदर एक अहम बात का ये पता चलता है कि जो निकाह होता है ये महज एक मामूली ताल्लुक नहीं है, बल्कि कुरान की रूह से ये एक इंतहाई मजबूत किस्म का मुआहदा होता है। और मुआहदा कहते किसको हैं? मुआहदा कहते इसको हैं कि जिसके अंदर दोनों एक दूसरे की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेते हैं, और जब जिम्मेदारियां लेते हैं तो फिर उसको पूरा भी करना होता है। तो ये एक अहम चीज है जो इस आयत मुबारक के अंदर बयान फरमाई है। उसके बाद हुर्मत के अहकाम बयान किए गए कि कौन कौन सी औरतों से निकाह करना हराम है। तो ये एक बड़ा अहम मामला है कि किन औरतों से निकाह करना हराम होता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा एक इस्लामी मुआशरा है और उसमें एक वाज़ेह सी चीज़ है कि कुछ रिश्ते हमारे लिए हराम हैं और उसके अलावा बहुत से रिश्ते हमारे लिए हलाल हैं। तो उसकी तफसील जो है ना, जो हराम रिश्ते हैं उनकी तफसील यहाँ पर बयान फरमाई गई। इरशाद फरमाया वला तंकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसा इल्ला मा कद सलफ इन्नहू कान फाहिशतन व मक्ता व साअ सबीला। और अपने बाप दादा की मनकूहा से निकाह ना करो, अलबत्ता जो पहले हो चुका वो मुआफ है, बेशक ये बेहयाई और गजब का सबब है और ये बहुत बुरा रास्ता है। ये भी जमाने जाहिलियत के अंदर एक तरीका था कि बाप के मरने के बाद बेटा अपनी सौतेली माँ से शादी कर लिया करता था, सगी माँ से नहीं, सौतेली माँ से शादी कर लिया करता था। तो यहाँ उससे जो है वो सख्ती से मना किया गया कि जो बाप की मनकूहा है, जिससे बाप का निकाह हो चुका, वो बेटे पर हमेशा हमेशा के लिए हराम, खा महज निकाह हुआ या निकाह के बाद मियां बीवी वाले मामलात भी हुए, बाहर सूरत जो बाप की मनकूहा है, जो दादे की मनकूहा है, वो बेटे के लिए हराम है। और फरमाया कि ये बेहयाई और गजब का रास्ता है। अब इसके बाद फिर अगली आयत में काफ़ी सारी तफसीली जो है वो हुर्मत की सूरतें बयान फरमाई हैं। फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। फरमाया तुम पर हराम कर दी गई तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी भतीजियाँ और तुम्हारी भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और दूध के रिश्ते से तुम्हारी बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की वो बेटियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं, जो उन बीवियों से हों जिनसे तुम हम बिस्तरी कर चुके हो। फिर अगर तुमने उन बीवियों से हम बिस्तरी ना की हो तो उनकी बेटियों से निकाह करने में तुम पर कोई हर्ज नहीं, और तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियां ये भी तुम पे हराम, और दो बहनों को निकाह में इकट्ठा करना हराम है, अलबत्ता जो पहले गुजर गया, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये एक पूरी फहरिस्त है जो मुहर्रमात की बयान की गई, जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं, जिसमें कुछ रिश्ते नसब के मुतालिक हैं कि बाप दादा और बेटा बेटी वगैरह ये वाले रिश्ते हैं, कुछ का ताल्लुक रदाअत यानी दूध के रिश्ते के साथ है कि दूध पिलाने वाली माँ या जो है वो दूध शरीक भाई बहन ये वाले रिश्ते, और कुछ का ताल्लुक मुसाहरत के साथ है यानी हुर्मत नसब, हुर्मत रदाअत और हुर्मत मुसाहरत, ये यहाँ पर बयान की गई। उसके बाद आगे हुर्मत शिर्क, वो इसे अगली आयत के अंदर बयान की गई है। तो यहाँ पर जितने रिश्ते बयान किए गए ये तकरीबन तकरीबन वाजे हैं, तर्जमे ही से जो है ना वो मालूम हो गए कि माँ बेटी बहन फूफी खाला भतीजी भांजी इन सब से निकाह करना हमेशा हमेशा के लिए हराम। उसके साथ दूध के रिश्ते, तो फरमाया दूध के रिश्ते से जो तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें दूध पिलाया, और इसी तरह दूध के रिश्ते से जो तुम्हारी बहनें हैं, ये रदाअत के अतबार से बीवियों की माएँ यानी सास, ये भी हराम। अच्छा, बीवियों की वो बेटियाँ, जैसे बीवी की कोई बेटी है जो पहले किसी शोहर से है, तो अब अगर इस बीवी के साथ कुर्बत हो चुकी तो इसकी बेटी हराम, और अगर सिर्फ निकाह हुआ लेकिन दोनों एक दूसरे से जुदा ही रहे, करीब नहीं आए, तो अब सिर्फ इस निकाह की वजह से जो इस औरत की किसी और शोहर से बेटी है वो हराम नहीं होगी। तो ये दो सूरतें इसकी बयान की। अच्छा, फिर इसके साथ बयान किया कि तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियाँ, तो जो बहू बनती है वो हराम, और फरमाया दो बहनों को निकाह में इकट्ठा करना, यानी बयक वक्त आदमी दो बहनों से निकाह करे या उसके निकाह में दो बहनें इकट्ठी हो जाएं, ये हराम। अच्छा, ये फिर बहनों के अलावा और भी इसमें सूरतें हैं, जैसे फूफी और भतीजी, खाला और भांजी, तो ये वाले रिश्ते जो हैं इनको भी जमा करना हराम है। तो ये हुर्मत की कुछ तफसीलात हैं जो इन आयात के अंदर बयान की गई। इसके बाद मजीद इरशाद होता है, वल मुहसनात मिनन निसाए इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वरा ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضه ان الله كان عليما حكيما। और शौहर वाली औरतें तुम पर हराम हैं सिवाय काफिरों की औरतों के जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं, ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ है, और इन औरतों के अलावा सब तुम्हें हलाल हैं कि तुम उन्हें अपने मालों के जरिए निकाह करने को तलाश करो, ना कि बदकारी करने के लिए। तो उनमें से जिन औरतों से निकाह करना चाहो उनके मुकर्ररा मेहर उन्हें दे दो, और मुकर्ररा मेहर के बाद अगर तुम आपस में किसी मिकदार पर राजी हो जाओ तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। ये मजीद इसी मसले के हवाले से, हुर्मत के हवाले से और कुछ मेहर के हवाले से मसला बयान किया गया। शादीशुदा औरत से निकाह हराम, लाजमी बात है कि जो किसी दूसरे के निकाह में है, तो अब निकाह पर निकाह करना ये हराम, और इसे हलाल समझना कुफ्र, एक बात। दूसरी बात कि काफिरों की वो औरतें कि जो मैदान जंग में मुसलमानों के हाथ आए और बादशाह इस्लाम उन्हें मुसलमानों में तकसीम करे, तो ये इल्ला मा मलकत अयमानुकुम के अंदर दाखिल, और इनकी हिल्लत जो है ये जुदा गाना कुरान से साबित। और फरमाया कि ये अल्लाह का लिखा हुआ तुम्हारे ऊपर हुक्म है कि इसमें ये रुख्सतें हैं, ये अहकाम हैं। अब ये हुर्मत वाली जितनी औरतें थीं इनका बयान कर दिया, नसब वाली, मुसाहरत वाली, रदाअत वाली, दीन वाली, इन सब के बाद अब फरमाया कि इनके अलावा जो और औरतें हैं वो सब तुम पर हलाल हैं कि तुम निकाह करके और मेहर अदा करके उन्हें अपने अकदे निकाह में ले आओ। तो अब यहाँ पर एक तो ये जो आयत मुबारक है इससे बहुत सारे रिश्तों की हिल्लत का पता चलता है, क्योंकि हराम रिश्तों की फहरिस्त अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी और फरमाया जो इनके अलावा हैं वो सब तुम पे हलाल। तो इसी वजह से अब जब कभी किसी के बारे में मसला पूछा जाए, जैसे हम दारुल इफ्ता में होते हैं, हमसे मसला पूछा जाता है जी फलां से निकाह करना हलाल है या नहीं, तो हम इस फहरिस्त के मुताबिक देखते हैं कि इसमें दाखिल नहीं तो फिर वो हलाल, इसमें दाखिल है तो हराम। जैसे मिसाल के तौर पे एक बड़ा आम सा मसला है, दो बहनें, एक जो है उसकी शादी हो जाए बाप के साथ, दूसरे की शादी हो जाए बेटे के साथ, यानी एक तरफ बाप बेटा, एक तरफ दो बहनें। अब आम तौर पे लोग इस पर परेशान हो जाते हो, अभी ये कैसे हो सकता है, जबकि ये फेहरिस्त में शामिल नहीं है, तो लिहाजा ये हलाल। इसी तरह की मिलती जुलती काफ़ी सारी सूरतें होती हैं कि जिसमें आवाम जो है वो आम तौर पे जो है वो तशवीश का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुक्म है, लेकिन यहाँ पर जो इसका फार्मूला बयान किया गया उसके मुताबिक भी उसका फैसला किया जाता है। और फरमाया कि ये जो अब हलाल औरतें हैं तो इन्हें निकाह के ज़रिए तलाश करो, बदकारी के ज़रिए नहीं माज़ल्ला। तो फरमाया इन्हें निकाह के ज़रिए जो है वो तुम अपने लिए हलाल बनाओ, और वो निकाह होगा माल के ज़रिए यानी महर के ज़रिए। तो महर जो है वो माल होगा, और माल के ज़रिए जो है वो यानी महर अदा करके फिर औरतों को अपने उसमें निकाह में लिया जाएगा। यानी कि महर होना चाहिए, ये नहीं है कि महर ना हो तो निकाह नहीं होता, महर फिर भी लाजिम हो जाता है, उसकी अपनी सूरतें होती। अच्छा, अब उसके बाद फरमाया कि जिन औरतों से निकाह करना चाहो उनके मुकर्रा महर उन्हें दे दो। तो एक तो है कि महर मुकर्रर कर लिया कि मिसाल के तौर पर 25,000 रुपये महर है। अब फरमाया कि अगर निकाह के बाद ये मियाँ बीवी आपस में किसी मकदार पर राज़ी हो जाएं, मसलन 25,000 रुपये महर रखा गया, अब निकाह के बाद शौहर कहता है कि तुम्हें मैं 25 की जगह 50,000 दूंगा, अगर ये आपस में तय कर लें तो अब वो महर जो है वो 25 से 50,000 हो जाएगा। और अगर इसके उलट हो जाए कि बीवी ये कहे कि मैं 25 की जगह जो है वो 15,000 लूंगी, तो अब ये 10,000 माफ़ हो गया और अब 15,000 उस पर लाजिम रह गया। तो फरमाया कि निकाह के बाद अगर किसी मकदार पे तुम राजी हो जाओ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ है। और महर की जो वैसे कम से कम मकदार है, यानी निकाह के लिए महर की जो कम से कम मकदार है वो है 10 दिरहम। 10 दिरहम बनती है 2 तोले 7.5 माशे चांदी। 2 तोले 7.5 माशे चांदी की जो रकम बनती है ये महर की कम से कम मकदार, ज़्यादा की कोई हद नहीं है। ज़्यादा महर जो है वो 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है, 1 अरब रुपया भी हो सकता है, लेकिन बहुत भारी महर रखना और बहुत ज़्यादा महर रखना इससे उलमा फरमाते हैं कि नहीं होना चाहिए। अच्छा निकाह वो है जिसमें महर की मकदार कम हो। अब इसके बाद कुछ मजीद मसाइल बयान किए गए, और ये भी फ़िक्ही मसाइल हैं, कुछ निकाह से मुतालिक हैं और कुछ हुदूद के बारे में हैं। फरमाया वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अय्यंकिहल मुहसनातिल मुमिनात फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ। और तुम में से जो कोई इतनी कुदरत ना रखता हो कि आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सके तो उन मुसलमान कनीज़ों से निकाह कर ले जो तुम्हारी मिल्क हैं, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है, तुम सब आपस में एक जैसे हो, तो बांदियों के मालिकों की इजाज़त से उन बांदियों से निकाह कर लो और अच्छे तरीके से उन्हें उनके महर दे दो, इस हाल में कि वो बांदियाँ वो औरतें निकाह करने वाली हों, ना बदकारी करने वाली और ना पोशीदा आशना बनाने वाली। ये चंद एक मजीद अहकाम हैं जिनका ताल्लुक जो है वो बांदियों के साथ है, लौंडियों के साथ है। फरमाया कि जो शख्स आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की ताकत ना रखे कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेहर अदा कर सके, ख़र्चा उठा सके, तो अब ऐसी सूरत में जो मुसलमान बांदियां हैं उनसे निकाह कर। और उसमें फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है, मुराद ये है कि ईमान बजाते खुद वो वस्फ है कि जिसके होते हुए मजीद किसी शय की हाजत नहीं, तो लिहाजा मोमिन बांदियां जो है उनसे निकाह किया जा सकता है, किताबी ऐसे भी हो सकता है लेकिन यहाँ बतौर खास मोमिना के हवाले से कलाम। और फरमाया कि तुम सब आपस में एक जैसे हो, सब आपस में एक जैसे हो से मुराद ये है कि तुम सब औलाद आदम, या ये है कि तुम जो है वो आपस में बनी नौए इंसान होने के अतबार से एक जैसे हो, तो बांदियों से निकाह करने से ना शर्माओ। तो औलाद आदम हो, दीन तुम्हारा मुश्तरक है, तो अब इस वजह से जो है वो तुम जो है वो ये ना समझो कि भी मैं बांदी से निकाह करके क्या करूँगा, मैं तो आज़ाद औरत से करूँगा, ये तुम्हारे मुआशरे का हिस्सा हैं, लिहाजा इनको भी इसी तरीके से मुआशरे का फ़र्द बना के रहना है। और फिर फरमाया कि अब ये जो निकाह करना है, चूँकि बांदी किसी शख्स की होती है, मर्द की या औरत की, तो जो उनके मालिक हैं उनकी इजाज़त से निकाह करो और उनके महर जो है वो उन औरतों के हवाले कर दो। और फरमाया कि निकाह के ज़रिए ही बांदियों को जो है वो अपने लिए हलाल समझो, ये ना हो कि बदकारी के लिए और पोशीदा यारियां और दोस्तियां और आशनाइयां लगाने के लिए किया जाए। तो ये इस्लाम ने जो है ये पहले दिन से फरमा दिया, क्योंकि होता ये था कि आज़ाद औरत जो है वो तो एक वर्थ और एक स्टेटस रखती है, उसकी वजह से वो अपना वक़ार और अपनी चीज़ों का ख्याल करती है, लेकिन जो बांदियाँ थी तो चूंकि उनका मुआशरे में ऐसा मकाम नहीं होता था, तो अब उनको वो यूँ समझ लिया कि भाई ये तो ऐसा ही है बस, जो मर्जी कर लें। तो उस पर फरमाया कि नहीं, उनके साथ भी जो ये मामलात हैं, जिनसी मामलात हैं, उसकी अपनी शरायत हैं, उसमें भी बदकारी या पोशीदा दोस्ती आशनाई की इजाज़त नहीं। तो ये जो मुआशरे में कमतर समझी जाती थी उनके साथ जब ये हुक्म है, तो जो आज का ज़माना है इस पर आप खुद गौर कर लें कि आज तो बांदियाँ नहीं होती, आजकल तो सारी जो है ना वो आज़ाद हैं, यानी कि शरई डेफिनेशन के अतबार से आज़ाद हैं। तो अब जो मोबाइल की दोस्तियाँ और जो गली मोहल्ले की यारियाँ और जो स्कूल कॉलेज की को एजुकेशन की वजह से जो आपस के ताल्लुकात और जो कुछ होता है, वो शायद ऐसा नहीं है कि जिसकी तफसीलात हमको पता ना हो। तो हमारा मुआशरा जो है वो किस हद तक इस बर्बादी और तबाही का शिकार होता जा रहा है, तो यहाँ कुरान पाक ने बयान फरमाया, गैरा मुसाफिहातिन वला मुत्तखिजाति अखदान, ना बदकारी करने वालियाँ हों और ना पोशीदा आशना बनाने वाली। तो अब मोबाइल की तबाही की वजह से, इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, और दफ्तरों में, ऑफिसेज में मर्दों औरतों के इकट्ठे नौकरी करने की वजह से, स्कूलों कॉलेजों के अंदर लड़के लड़कियों की इकट्ठी तालीम की वजह से, तो ये सब मिलजुल के एक वो सूरत बन गई कि जो इस्लाम ने यहाँ बड़ी बेसिक चीज़ बयान फरमाई थी कि मुआशरे से बदकारी का खात्मा हो और इस तरह की पोशीदा आशनाइयों का खात्मा हो, यहाँ पर सारे का सारा उसके उलट हो रहा है। और हाल वो है कि जिसकी तफसील जो है वो शायद बयान करना जो है वो लोगों के सामने बयान करते हुए जब वो ज़बान भी साथ नहीं देती इसके पीछे। तो अब जो इसके असबाब बनते हैं, इसके असबाब में क्या है, को एजुकेशन इसका बहुत बड़ा सबब, यानी इस बेहयाई का, बेशर्मी का बहुत बड़ा सबब जो है को एजुकेशन है। इसी तरह मर्द औरतों का इकट्ठे नौकरियां करना है, इसी तरीके से मोबाइल का बिल्कुल खुली छूट और खुला इस्तेमाल है, इसी तरह सोशल मीडिया है, इसी तरह टीवी है, फिल्में हैं। तो वो सब मिलजुल के जो सिखाते हैं और जो आज़ादियां देते हैं और जितनी छूट उसके अंदर मिलती है, उसके नतीजे के अंदर शैतान और नफ्स हमला करते हैं और फिर तबाही मचती। लिहाजा जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान ख़ानदान हैं, जो मुसलमान कहलाने वाले हैं, वो अपने रब के फरमान और कुरान की इस तालीम को अपने पेश नज़र रखें और उन तमाम चीज़ों का तदारुक करें, उनका खात्मा करें कि जिनकी वजह से खिलाफ़ इस्लाम जो तर्ज अमल बेहयाई के हवाले से है वो माशरे के अंदर बढ़ता जा रहा है। अब इन मसाइल के बाद अब फरमाया, फ़ैज़ा उहसिन्ना फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ। फिर जब उन बांदियों का निकाह हो जाए तो अगर वो किसी बेहयाई का इर्तिकाब करें तो उन पर आज़ाद औरतों की निस्बत आधी सज़ा है। ये तुम में से उस शख्स के लिए मुनासिब है जिसे बदकारी में पड़ जाने का अंदेशा है, और तुम्हारा सब्र करना तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पर जो मसाइल हैं उसमें एक मसाला है हद के बारे में। बदकारी की सज़ा इस्लाम में अगर गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े हैं, अगर शादीशुदा हो तो रजम करना है। लेकिन जो बांदियाँ हैं, क्योंकि रजम का निस्फ नहीं हो सकता कि आधा रजम किया जाए, ये एक सूरत नहीं बनती, तो अब उसकी सूरत क्या है, उसकी सूरत यह है कि जो बांदियां हैं, जो गुलाम हैं, उन पर बाहर सूरत जो सज़ा है वो निस्फ कोड़े ही होंगे, यानी वो 50 कोड़े ही उनकी सज़ा होगी। और फरमाया कि ये जो हुक्म बयान किया गया ना कि जो आज़ाद औरतों से निकाह ना कर सके तो वो बांदियों से निकाह कर ले ताकि बदकारी में ना पड़े, कि वो ज़्यादा शदीद और संगीन है। तो फरमाया कि ये उसके लिए है जिसे बदकारी में पड़ जाने का अंदेशा है, तो लिहाजा वो बाहर सूरत अपनी इस्मत की हिफाजत करे। और तुम्हारा सब्र करना कि तुम जो है वो इस तरह के मामलात में ना जाओ और इससे रुके रहो, तो फरमाया ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा, इसमें एक मसला और भी अर्ज कर दूं कि जो शख्स आज़ाद औरत से निकाह की कुदरत रखता हो तो मुसलमान कनी से निकाह करना उसे भी जायज़ है, लेकिन आज़ाद औरत पहले से निकाह में हो तो अब कनी से निकाह करना जायज़ नहीं होता। तो ये एक मसला है, लेकिन चूंकि इसका फी जमाना वकू नहीं है कि हमारे यहाँ जो है वो बांदियाँ वगैरह इस वक्त दुनिया में होती नहीं है, तो लिहाजा इसलिए ज़्यादा तफसील इसकी मैं बयान नहीं कर रहा। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने अहकाम की हिकमतें बयान फरमाई, फरमाई युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुनन लदीन मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह चाहता है कि अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान कर दे और तुम्हें तुमसे पहले लोगों के तरीके बता दे और तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाए, और अल्लाह इल्मो हिकमत वाला है। यहाँ पर दो बातें इरशाद फरमाई, पहली बात तो फरमाई कि ये जो अहकाम इतनी तफसील से बयान की ये क्या है, तो फरमाई ये इसलिए है ताकि अल्लाह ताला अपने अहकाम तुम्हारे ऊपर खोल कर वाज तौर पे बयान कर दे कि उसमें तुम्हें कोई इबहाम ना रहे। दूसरी बात फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसे ही रहनुमाई करे जैसे तुमसे पहली उम्मतों की रहनुमाई फरमाई कि हलालो हराम के मसाइल उनके दरमियान बयान फरमाए, और दूसरा ये है कि पहले लोगों में भी जो हिल्लत और हुरमत चलती आ रही थी अल्लाह ताला तुम्हारे सामने उसे बयान फरमा दे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो अहकाम बयान किए गए इनमें बहुत से अहकाम हुए हैं जो पिछली उम्मतों में भी थे, यानी कि यहूदियत और ईसाइत के अंदर भी इस तरह के अहकाम थे, सारे के सारे नहीं लेकिन बहुत सारे मौजूद थे। तो अब जो पिछली उम्मतों के अहकाम कुरान हदीस में बगैर तरदीद के मनकूल हों तो वो हुक्म हमारे लिए भी होता है, और जो तरदीद के साथ आ जाए वो हमारे लिए नहीं होता। और फरमाया कि अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाना चाहता है, यानी खुदा यह अहकाम इसलिए देता है कि खुदा तुम पे मेहरबानी फरमाए। फिर मसीह फरमाया वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिउनश शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा, और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाना चाहता है, और जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत दूर हो जाओ। अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए ये खुदा की रहमत कि इंसान के कुछ जिस्मानी तकाजे हैं जो बसूरत निकाह और इस तरह के मामलात के जरिए पूरे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने बंदों पर मेहरबानी फरमाई कि उन्हें इन चीज़ों में रुख्सतें अता फरमाई। अच्छा, अब इसके मुकाबले में दूसरे वो लोग हैं कि जिन्होंने हिल्लत और हुरमत को पामाल किया, जैसे मजूसियों के मज़हब में क्या था कि मजूसी जो है वो अपनी बहनों से निकाह करने को हलाल समझते हैं, उनके यहाँ ये राय। अच्छा, इसी तरह जो मुशरिक थे तो मुशरिकों का जैसे अभी ऊपर गुजरा कि अपनी सौतेली माओं से वो निकाह कर लेते थे, तो अब ये जो मजूसी और मुशरिक और इसके अलावा जो और लोग हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी ख्वाहिशात और अपने अपने जो है वो तरीके बनाए हुए थे, तो फरमाया कि वो ये चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत दूर हो जाओ, क्योंकि सीधी राह वो है कि जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दी कि ये हलाल ये हराम, अब इससे हटकर अगर अपनी मर्जी से चलेंगे तो सीधी राह से हट जाएंगे। तो फरमाया कि अपनी ख्वाहिशात नफसानी में डूबे हुए लोग ये चाहते हैं कि तुम खुदा के रास्ते से हट जाओ, और ये बात जो है आज के ज़माने में तो इस कदर वाज़े है कि इस वक्त जो ट्रांसजेंडर का मामला है, जो हम जिंस परस्ती का मामला है, जो एलजीबीटी का मामला है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे राहे हक से दूर होने की सूरत है। दुनिया भर के अंदर जो है वो बेहयाई के जो है गैर इंसानी और गैर फितरी तरीकों को जायज़ करार देने के लिए वहाँ की पार्लियामेंट्स के अंदर वहाँ के दानिश्वर और वहाँ के जो कलमकार हैं और जो लिखारी हैं वो इसकी ताईद के अंदर लिखते हैं, बिल पास किए जाते हैं, इजाज़तें दी जाती हैं। ये सब क्या है कि खुदा तो चाहता है कि बंदों पे मेहरबानी फरमाए, लेकिन ख्वाहिशात नफ्स के पैरोकार और ग़ुलाम जो है वो चाहते हैं कि राह हक से दूर हो जाए। तो ये गोया एक बड़ा बहुत बड़ा वजह फ़र्क और वजह इम्तियाज है इस्लाम और गैर इस्लाम में, मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में। तो लिहाजा जो लिबरलिज्म के नाम पे या सेकुलरिज्म के नाम पर इन होने वाली तब्दीलियों को और चीज़ों को आंखें बंद करके कह देते हैं जी ये उनका मामला है हम क्या करें, बात ये नहीं है। बात ये है कि तुमने कलिमा पढ़ा है, तुम खुदा को मानने वाले हो, तो जो खुदा का हुक्म और खुदा का तरीका है तुम्हें इसकी ताईद करनी है। तुम्हें ये नहीं कहना कि भाई मेरा खुदा तो भले इसको हराम कहता रहे लेकिन मुझे आई कोई टेंशन नहीं, आई डोंट केयर। यानी खुदा तुम्हें हुक्म दे रहा है जिसका तुम कलमा पढ़ते हो और तुम उसी के हुक्म के बारे में कह रहे हो कि भाई मुझे तो कोई मसला नहीं है, अगर दुनिया इस तरह करती है तो करती रहे, तो तुमने कलमा क्या पढ़ा होगा। तो लिहाजा इस्लामी मुल्क में ऐसी बेहयाई फैलाना या गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर होने वाली बेहयाई पर आंखें बंद करना या उसकी ताईद करना, ये अल्लाह के कानून के अंदर ये जुर्म है। तो जहां मुसलमान जो है वो उसे जो हुक्म है बुराई को रोकने का, तो जो जिस चीज को बुराई अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है उस बुराई को रोकना, उसे बुरा समझना, ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। लिहाजा इन चीजों के ऊपर यूं जो है ना वो ठंडे मीठे बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि इजाजत भी नहीं। उसके बाद फरमाया युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अनकुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफा, अल्लाह चाहता है कि तुम पर आसानी करे और आदमी कमजोर बनाया गया है। अल्लाह ताला ने जितनी इजाजतें दी हैं बीसियों मुश्किल जगहों पे आसान अहकाम दिए हैं, तो अब ये जो आसानियां अल्लाह ताला ने दी हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला बंदों पे मेहरबान है और अल्लाह ताला को मालूम है कि इंसान को कमज़ोर बनाया गया है, कि इंसान जो है वो हिम्मत भी जल्दी हार लेता है, उसका बदन भी जल्दी साथ छोड़ देता है, उसके बदन की एक लिमिट भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इंसान को, इंसान कमज़ोर तो बनाया गया लेकिन उसके साथ जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर विल पावर, कुव्वत इरादी और जो अक्ल व शऊर उसे अता फरमाया है, वो ऐसा है कि वही कमज़ोर इंसान जो है वो पहाड़ों की बुलंदियों पर भी जाता है, वही चांद पर भी जाता है, वो दुनिया का निज़ाम भी चला रहा है। तो ये कमज़ोरी का और अक्ल व शऊर का एक इम्तिज़ाज है जो खुदा ने इंसान की सूरत में बनाया है। अब इसके बाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम वला तक्तुलू अन्फुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। फरमाया ए ईमान वालो, बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ, अलबत्ता ये हो कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से तिजारत हो, और अपनी जानों को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। इससे पहले जो कुछ था वो था निकाह के जरिए नफ्स में तसर्रुफ, निकाह के जरिए इंसानी वजूद में तसर्रुफ, यहां आ गया माल में तसर्रुफ। नफ्स और माल दो चीजें हैं और दोनों में तसर्रुफात के दायरे हैं, तो यहां पर माल में तसर्रुफ का बयान किया गया। हुक्म क्या दिया? फरमाया कि एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ। बातिल तरीके क्या हैं? चोरी, डकैती, रिश्वत, सूद, धोखा, फ्रॉड, और ये सारे के सारे तरीके जो है ये बातिल तरीके हैं। तो फरमाया कि इन तरीकों से दूसरों का माल ना खाओ, ये सब हराम है। रिश्वत हराम है, सूद हराम है, चोरी, डकैती, मोबाइल छीनना, ज़मीनों पे कब्ज़े, फ्लैटों पे कब्ज़े, प्लाटों पे कब्ज़े और ज़रई ज़मीनों पे कब्ज़े, ये सब सूरतें अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हराम हैं, बातिल हैं, इस तरीके से एक दूसरे का माल ना खाओ। अब जायज़ तरीका क्या है? फरमाया जायज़ तरीका ये है कि बाहम रजामंदी के साथ आपस में तिजारत करो, तिजारत करो, उससे तुम 100 रुपया कमाओ, 1000 कमाओ, लाख कमाओ, करोड़ रुपया कमाओ, अरब रुपया कमाओ, खरब रुपया कमाओ, सब इजाजत है, जितना मर्जी कमा लो, लेकिन तिजारत हो दयानतदारी के साथ, बाहमी रजामंदी के साथ। लूट मार का 1 रुपया भी हराम और जायज तिजारत का 1 खरब रुपया भी हलाल। वो 1 खरब रुपया भी अपनी जात पे खर्च कर लेंगे, कोई गुनाह नहीं होगा, और हराम का 1 रुपया भी अपनी जान पे खर्च करेंगे, जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगा। तो फरमाया कि हराम और बातिल तरीके से ना खाओ, बल्कि बाहमी रजामंदी से तिजारत करो, और फरमाया कि अपनी जानों को कत्ल ना करो। इसके कई मानी हैं, एक तो ये भी है कि वो काम ना करो कि जिसके बाद आपस में जो है वो लड़ाई और मारधाड़ हो जाए। जैसे एक दूसरे का माल छीनोगे, एक दूसरे डकैतियां चोरियां करोगे, एक दूसरे की ज़मीनों पे कब्जे करोगे, तो क्या होगा? दूसरा फरीक भी उठ खड़ा होगा, वो भी अपनी बंदूक पकड़ लेगा, वो भी जो है वो बदला लेने पर आ जाएगा, तो नतीजा क्या होगा कि एक दूसरे को मारोगे। तो वो काम ना करो कि जिसके बाद एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे हो जाए, एक बात। दूसरी बात, दूसरा तर्जमा है कि किसी को कत्ल ना करो, कि अल्लाह ताला ने कत्ल को, जान से मारने को गुनाहे कबीरा, हराम और जहन्नम में अरसाए दराज के लिए जाने का सबब बनाया है। तो लिहाजा किसी की जान ना लो। अल्लाह की बारगाह में बंदे की जान जो है बड़ी कीमती है, इंसानी जान जो है वो बहुत कीमती। और तीसरा माना यह है कि अपनी जानों को कत्ल ना करो, यानी खुदकुशी ना करो। तो खुदकुशी जो है ये भी हराम है और ये भी जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और फरमाया ये जो खुदा के अहकाम है ये क्या है कि इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह तुम पे मेहरबान है। اس کی مہربانی ہے اور اس کی مہربانی کے اظہار ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احکام دیتا ہے. اب فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. جو قتل و غارت گری کرے گا, جو دوسرے کا مال کھائے گا, جو جان و مال کے اندر حرام تصرف کرے گا, تو فرمایا جو بھی ایسا ظلم و زیادتی سے کرے گا ہم اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. یہ اس سے واضح اور وعید کیا ہو سکتی. اور فرمایا کہ یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے, تو ہم یا لوگ جو ہے جو بہت سے مختلف جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں نا کہ ہمارا تو ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں, ہمارے لیے تو فلاں, ہمارے لیے تو فلاں, ہم تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. کوئی شے اللہ کے فضل سے بندے کے لیے سہارا بن جائے وہ خدا کی مرضی پہ ہے, مشیت پہ ہے. لیکن جو خدا کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ خدا پہ بڑا آسان ہے کہ جو بھی ظلم و زیادتی کرے گا, قتل و غارت گری کرے گا, دوسرے کا حرام مال کھائے گا, بدکاری میں پڑے گا, اسے جہنم میں ڈال دینا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تو لہذا اس وعید کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ بندہ اپنے عمل کی طرف توجہ دے. اس کے بعد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. اوپر جو بیان کیا نا یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں, بدکاری بھی, کسی کا مال کھانا بھی, قتل کرنا بھی, لڑائی بھی, خودکشی بھی, یہ سب کبیرہ گناہ. اچھا, اس کے علاوہ ہر وہ گناہ کہ جس پہ قرآن پاک میں جہنم کی وعید ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے, اور اسی طرح جس پہ کوئی سخت وعید ہے وہ کبیرہ گناہ, خواہ وہ نماز چھوڑنا ہو, زکوٰۃ نہ دینا ہو, ماں باپ کو ستانا ہو, بیوی پہ ظلم کرنا ہو, یہ سب کبیرہ گناہ. فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے تم بچو تو جو تمہارے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے نا وہ ہم معاف کر دیں. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی کا انداز ہے کہ فرمایا بڑے گناہوں سے بچو, چھوٹے گناہ جو ہے وہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے, یعنی جنت میں داخل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن, قرآن.